एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जो मतलब नाटकीय घटनाओं, त्रासदियों और बड़े बड़े बदलावों से भरा हुआ है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 17वीं सदी के ब्रिटेन की, और जॉन मॉरल की किताब स्टुअर्ट ब्रिटेन के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये वो सदी थी जिसने ब्रिटेन को मतलब हमेशा के लिए बदल दिया।
हाँ, सोचिए जरा, इसी दौरान गृह युद्ध हुए, एक राजा को सजाए मौत दी गई, कुछ वक्त के लिए राजशाही ही खत्म हो गई, और फिर एक क्रांति भी हुई, काफी कुछ हुआ।
और ये समझना आज भी जरूरी है क्योंकि इसी उथल पुथल से कहीं ना कहीं आधुनिक ब्रिटेन का जो राजनीतिक ढांचा है वो निकला।
सही कहा। और मॉरेल की किताब इस कहानी को एक कह सकते हैं नए नजरिए से देखती है, जो पारंपरिक धारणाएं है ना उनसे थोड़ा हटकर।
हाँ, वो बताती है कि ये सब क्यों हुआ और इससे हम आज जैसे शासन है, धर्म है, समाज है, इनके टकराव के बारे में क्या सीख सकते हैं, ये आज भी प्रासंगिक है।
बिल्कुल।
तो चलिए सबसे पहले लेखक जॉन मॉरेल के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ऐसा क्या खास है उनके नजरिए में, क्यों इतना अलग माना जाता है?
देखिए, जॉन मॉरेल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इतिहास के मतलब बहुत जाने माने प्रोफेसर रहे हैं, खासकर 17वीं सदी के विशेषज्ञ। वो इतिहास लेखन के संशोधनवादी स्कूल से जुड़े हैं।
संशोधनवादी, इसका क्या मतलब हुआ?
संशोधनवादी मतलब वो इतिहासकार जो पुरानी जो स्थापित मान्यताएं होती है ना उन पर सवाल उठाते हैं और नए सबूतों या नए नजरिए से उन्हें चुनौती देते हैं।
जैसे 1970 के दशक में उन्होंने पुरानी विग व्याख्या,
विग्स यानी वो जो मानते थे कि इतिहास बस लोकतंत्र की तरफ सीधा बढ़ रहा है, हाँ हाँ वही, और मार्क्सवादी व्याख्या जो वर्ग संघर्ष पर जोर देती थी, उनको मॉरेल और उनके साथियों ने चुनौती दी।
अच्छा, और उनकी खास बात क्या रही मतलब रिसर्च में?
दो मुख्य बातें हैं मेरे ख्याल से। पहली, उन्होंने स्थानीय इतिहास पर मतलब लोकल हिस्ट्री पर बहुत काम किया। उनकी एक काफी मशहूर किताब है द रिवॉल्ट ऑफ द प्रोविंसेस।
हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में।
उसमें उन्होंने दिखाया कि उस जमाने के जो आम लोग थे उनके लिए लंदन की बड़ी राजनीति से ज्यादा जरूरी उनका अपना इलाका, अपनी काउंटी थी। वफादारी पहले लोकल होती थी। इसे नीचे से ऊपर इतिहास देखना कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच।
अच्छा, ये दिलचस्प है। और दूसरी बात?
दूसरी और शायद सबसे अहम बात, मॉरल धर्म को, रिलीजन को इस पूरी कहानी के सेंटर में रखते हैं।
धर्म को मतलब राजनीति से भी ज्यादा?
हाँ, उनका मानना है कि 17वीं सदी के लोगों की सोच, उनके डर, उनकी प्रेरणाएं, इन सबको समझने के लिए धर्म को समझना सबसे जरूरी है। वो कहते हैं कि उस वक्त के जो संघर्ष थे ना वो असल में धार्मिक संघर्ष थे। ये स्थानीयता और धर्म पर जोर यही मॉरल के नजरिए को खास बनाता है।
ये तो काफी अलग नजरिया है। तो अब किताब पर आते हैं, स्टुअर्ट ब्रिटेन। इसका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, किस बारे में है ये किताब?
देखिए, ये किताब 1603 में जेम्स प्रथम के राजा बनने से लेकर 1714 में रानी एनी की मौत तक मतलब पूरे स्टुअर्ट दौर का एक तरह से विश्लेषण करती है।
ठीक है।
और मॉरेल का मुख्य तर्क ये है कि इस सदी की जो भयानक उथल पुथल थी वो गृह युद्ध, राजा की फांसी, फिर वो रिपब्लिक का प्रयोग, गौरवशाली क्रांति, ये ना तो लोकतंत्र की तरफ कोई सोचा समझा कदम था।
यह सभी इतिहासकार मानते थे।
हाँ बिल्कुल। और ना ही ये कोई अमीरों और गरीबों के बीच की लड़ाई थी जैसा मार्क्सवादी कहते थे।
तो फिर क्या था? अगर ये सब नहीं था तो मॉरेल के हिसाब से इन सब का कारण क्या था, मतलब इतनी बड़ी उथल पुथल क्यों हुई?
मॉरेल कहते हैं कि ये सब असल में शासन की विफलता थी। सीधी सी बात, स्टुअर्ट राजा अपने राज्यों को ठीक से संभाल नहीं पाए और इस विफलता का सबसे बड़ा कारण था गहरा धार्मिक मतभेद।
धर्म वाला एंगल फिर से?
हाँ, जिसे वो सुलझा नहीं सके। और ऊपर से एक और बड़ी चुनौती थी, ये स्टुअर्ट राजा सिर्फ इंग्लैंड के नहीं थे बल्कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड के भी राजा थे।
अच्छा, ये तीन राज्यों वाली बात?
बिल्कुल। ये तीन अलग अलग राज्य जिनकी अपनी अलग कानून व्यवस्था थी, अपनी संस्कृति थी, अपनी धार्मिक मान्यताएं थी, इन पर एक साथ शासन करना ये बहुत मुश्किल काम था। इसी को मॉरेल मल्टीपल मोनार्की या एकाधिक राजशाही की समस्या कहते हैं।
यानी तीन राज्यों को संभालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सिरदर्द था।
हाँ, जबरदस्त सिरदर्द। और मॉरेल का सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार शायद ये है कि अंग्रेजी गृह युद्ध कोई पहली मॉडर्न क्रांति नहीं थी बल्कि यूरोप में जो धर्म के नाम पर बड़े युद्ध हुए ना।
हाँ, वो 30 ईयर्स वॉर वगैरह।
हाँ, उन्हीं की श्रृंखला की ये आखिरी कड़ी थी। किताब इस सवाल का जवाब ढूंढती है कि भाई 1603 में जो राज्य स्टुअर्ट्स को मिला वो इतना अस्थिर क्यों हो गया।
सही सवाल है।
और मॉरेल का जवाब है, ये एक आकस्मिक संकट था, एक्सीडेंटल क्राइसिस। मतलब ये राजाओं की गलतियों, धार्मिक कट्टरता, स्थानीय शिकायतों और तीनों राज्यों के बीच तनाव का एक ऐसा मिलाजुला नतीजा था जिसे किसी ने पहले से प्लान नहीं किया था। ये कोई आजादी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि हालात बस बिगड़ते चले गए।
चलिए अब इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं, किरदारों और घटनाओं के साथ। शुरुआत करते हैं जेम्स प्रथम से 1603 में। उनके सामने क्या चुनौतियां थीं?
जेम्स प्रथम जो पहले स्कॉटलैंड के राजा थे, वो इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठे, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही मल्टीपल मोनार्की वाली थी, तीन राज्यों को संभालना।
और उनका मिजाज कैसा था?
उन्हें शांतिप्रिय राजा रिक्स पैसिफिकस कहा जाता था, और वो चतुर भी थे, लेकिन कई समस्याएं थीं, जैसे संसद अपने हक को लेकर ज्यादा मुखर होने लगी थी, शाही खजाना खाली था, और धर्म को लेकर समाज बुरी तरह बटा हुआ था।
धर्म वाला मामला क्या था उस वक्त?
देखिए, इंग्लैंड का जो चर्च था वो एक तरह का बीच का रास्ता वाया मीडिया अपनाता था। इससे न तो वो कट्टर प्रोटेस्टेंट जिन्हें प्यूरिटन कहते थे वो खुश थे,
वो चर्च को और शुद्ध करना चाहते थे ना?
हाँ बिल्कुल, और ना ही वो लोग खुश थे जिनका झुकाव कैथोलिक परंपराओं या फिर आर्मेनियन विचारों की तरफ था।
आर्मेनियन ये कौन थे?
आर्मेनियन वो थे जो चर्च में रस्मों रिवाज, सेरेमनीज और बिशप के अधिकार पर ज्यादा जोर देते थे। प्यूरिटनों को लगता था कि ये कैथोलिक धर्म की तरफ वापसी है।
अच्छा, यानी जेम्स के समय में ही मतलब तनाव के बीज तो बो दिए गए थे।
हाँ, मॉरल के अनुसार ये समस्याएं ढांचागत थी, स्ट्रक्चरल थी, किसी एक व्यक्ति की देन नहीं। फिर उनके बेटे चार्ल्स प्रथम का दौर आया 1625 से, और वो ज्यादा मुश्किल साबित हुआ।
चार्ल्स प्रथम कैसे थे, पिता से अलग?
हाँ, काफी अलग। चार्ल्स सिद्धांतों पर अड़ने वाले थे, धार्मिक थे, लेकिन उतने ही जिद्दी, अड़ियल और राजनीतिक रूप से कह सकते हैं अकुशल थे,
अविश्वसनीय भी माने जाते थे। उनके समय में क्या हुआ फिर? शुरुआत कैसी रही?
शुरुआत से ही संसद से उनका झगड़ा, पैसे को लेकर, विदेश नीति को लेकर। 1628 में संसद ने वो मशहूर पिटीशन ऑफ राइट पास किया।
हाँ, वो राजा के अधिकारों पर रोक लगाने की कोशिश थी।
बिल्कुल, जैसे बिना संसद की मर्जी के टैक्स लगाना या लोगों को बेवजह कैद करना। इसके बाद चार्ल्स ने गुस्से में 11 साल 1629 से 1640 तक बिना संसद बुलाए ही राज किया।
11 साल? इसे व्यक्तिगत शासन या पर्सनल रूल कहते हैं शायद।
हाँ, पर्सनल रूल। और इसी दौरान उन्होंने वो शिप मनी जैसा टैक्स लगाया। ये पारंपरिक रूप से सिर्फ तटीय इलाकों से युद्ध के समय लिया जाता था, लेकिन चार्ल्स ने इसे पूरे देश पर शांति के समय में भी लगा दिया। लोगों में बहुत नाराजगी थी इससे।
लेकिन मॉरल तो कहते हैं कि धर्म ज्यादा बड़ा मुद्दा था।
सही कहा। मॉरल के हिसाब से चार्ल्स के दौर की सबसे बड़ी फास, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी धार्मिक नीति थी, और इसे लागू किया आर्च बिशप विलियम लॉर्ड ने।
लॉर्ड ने क्या किया?
लॉर्ड ने चर्च में आर्मेनियन सुधारों को बड़ी सख्ती से लागू किया। रस्मों रिवाज पर जोर, चर्च की सजावट, वेदी को रेलिंग से घेरना, ये सब।
इससे प्यूरिटन्स तो भड़क गए होंगे।
भड़क गए प्यूरिटनों और बहुत से आम प्रोटेस्टेंटों को लगा कि ये सब कैथोलिक धर्म की वापसी की तैयारी है, और उस वक्त इंग्लैंड में कैथोलिक होने का मतलब था देशद्रोही होना, पोप का एजेंट होना। ये डर बहुत गहरा था। यही डर और गुस्सा चार्ल्स के खिलाफ विरोध का सबसे बड़ा कारण बना मॉरल के अनुसार।
और फिर कहानी सिर्फ इंग्लैंड तक नहीं रुकी। मॉरल इसे तीन राज्यों का युद्ध कहते हैं, 1640 से 1649 तक।
बिल्कुल, मॉरल कहते हैं कि असली चिंगारी स्कॉटलैंड से उठी 1637 में, जब चार्ल्स ने स्कॉटलैंड के प्रेस्बिटेरियन चर्च पर इंग्लैंड की प्रार्थना पुस्तक थोपने की कोशिश की, तो वहां जबरदस्त बगावत हो गई।
अच्छा,
स्कॉट्स ने नेशनल कोवेनेंट पर दस्तखत किए जिसमें उन्होंने अपने धर्म की रक्षा की कसम खाई। फिर हुए बिशप युद्ध जिसमें स्कॉट्स ने चार्ल्स की फौजों को हरा दिया।
ओहो।
और इन युद्धों का खर्चा उठाने के लिए चार्ल्स को पैसों की जरूरत पड़ी, और इसके लिए उन्हें मजबूरन 1640 में 11 साल बाद इंग्लैंड की संसद बुलानी पड़ी।
और यही वो लॉन्ग पार्लियामेंट थी जो सालों तक चली।
हाँ वही, और इस संसद ने आते ही चार्ल्स के व्यक्तिगत शासन के सारे तौर तरीकों को खत्म करना शुरू कर दिया। लॉर्ड को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, चार्ल्स के मंत्रियों पर मुकदमे चले।
लेकिन तभी आयरलैंड में भी कुछ हुआ।
हाँ, मामला और बिगड़ गया। 1641 में आयरलैंड में कैथोलिकों ने विद्रोह कर दिया। वहां जमीनों और धर्म को लेकर उनकी अपनी पुरानी शिकायतें थी।
और इंग्लैंड में इसका क्या असर हुआ?
इंग्लैंड में इस विद्रोह की खबरें पहुंची और उनमें प्रोटेस्टेंट्स के भयानक कत्लेआम की बातें बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई। इससे इंग्लैंड में दहशत फैल गई। अब सवाल ये उठा कि इस आयरिश विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना बनेगी उसका कंट्रोल किसके पास होगा, राजा के पास या संसद के पास?
और किसी को किसी पर भरोसा नहीं था।
बिल्कुल, विश्वास पूरी तरह टूट चुका था। इसी अविश्वास के कारण 1642 में गृहयुद्ध छिड़ गया।
लेकिन क्या सब लोग लड़ना चाहते थे? मॉरेल तो कहते हैं कि नहीं।
हाँ, मॉरेल इसी बात पर जोर देते हैं कि ज्यादातर लोग लड़ना नहीं चाहते थे। ये कोई ऐसी विचारधारा की लड़ाई नहीं थी जिसमें सब खुशी खुशी कूद पड़े। लोग मजबूरन इसमें खिंचते चले गए। उनकी वफादारी अक्सर अपने इलाके या अपने लोकल जमींदार के प्रति होती थी, किसी बड़े कारण के प्रति नहीं।
तो फिर पहला गृह युद्ध कैसे खत्म हुआ?
पहले गृह युद्ध में संसद की तरफ से लड़ने वाली न्यू मॉडल आर्मी निर्णायक साबित हुई। ये एक पेशेवर, अनुशासित और काफी हद तक वैचारिक रूप से प्रेरित सेना थी। क्रॉम्वेल जैसे लीडर थे इसमें। राजा हार गए,
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
नहीं, बिल्कुल नहीं। जीत के बाद संसद के समर्थकों में ही फूट पड़ गई। कुछ लोग प्रेस्बिटेरियन व्यवस्था चाहते थे, कुछ क्रॉम्वेल जैसे इंडिपेंडेंट्स ज्यादा धार्मिक आजादी चाहते थे। राजा चार्ल्स ने इस फूट का फायदा उठाने की कोशिश की स्कॉट्स के साथ मिलकर। इससे दूसरा गृह युद्ध छिड़ गया 1648।
और इस बार नतीजा क्या निकला?
इस बार सेना का जो कट्टरपंथी गुट था वो हावी हो गया। उन्हें लगा कि चार्ल्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो खून के प्यासे हैं। उन्होंने संसद से नरमपंथी सदस्यों को निकाल दिया और 1649 में चार्ल्स प्रथम पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी।
एक राजा को फांसी, ये तो मतलब अभूतपूर्व घटना थी।
हाँ, पूरे यूरोप में सनसनी फैल गई। इसके बाद इंग्लैंड बिना राजा के रहा 1649 से 1660 तक। इसे अंतर्राज्यकाल या इंटरएग्नम कहते हैं।
इस दौर में क्या हुआ?
पहले कुछ साल राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ रहा, मतलब एक तरह का गणतंत्र। फिर ऑलिवर क्रॉमवेल लॉर्ड प्रोटेक्टर बन गए 1653 में। वो एक तरह के सैन्य शासक थे।
क्रॉमवेल कैसे थे? सफल रहे?
क्रॉमवेल खुद एक बहुत जटिल शख्सियत थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो बेहतरीन फौजी कमांडर थे और उनके धार्मिक विश्वास बहुत पक्के थे, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो कोई स्थायी व्यवस्था नहीं बना पाए। उन्होंने आयरलैंड और स्कॉटलैंड को तो बड़ी बेरहमी से जीता।
हाँ, आयरलैंड में उनके अभियान आज भी याद किए जाते हैं।
बिल्कुल, लेकिन इंग्लैंड में वो सेना और राजनीतिक वर्ग दोनों का समर्थन एक साथ नहीं रख सके। उनके मरने के बाद 1658 में कोई मजबूत नेता नहीं उभरा, अराजकता फैल गई और लोग फौजी शासन से तंग आ चुके थे। इसीलिए 1660 में चार्ल्स प्रथम के बेटे चार्ल्स द्वितीय को वापस बुलाकर राजशाही बहाल कर दी गई।
इसे बहाली या रेस्टोरेशन कहते हैं। तो क्या चार्ल्स द्वितीय के आने से सब ठीक हो गया, शांति आ गई?
शुरुआत में तो ऐसा ही लगा। चार्ल्स द्वितीय अपने पिता से बिल्कुल अलग थे। मजेदार, व्यवहार कुशल, जिंदगी का लुत्फ उठाने वाले। लोगों ने उनका स्वागत किया, लेकिन ये समझौता भी कह सकते हैं अधूरा था।
कैसे?
चार्ल्स ने वापसी से पहले ब्रेडा की घोषणा में कुछ वादे किए थे, जैसे माफी देना, धार्मिक सहिष्णुता रखना। लेकिन जो संसद चुनी गई वो बहुत कट्टर थी। उसे कैवेलियर पार्लियामेंट कहते हैं। उसने क्लैरेंडन कोड जैसे कानून पास किए।
इसमें क्या था?
इनसे प्योरिटनों और दूसरे गैर एंग्लिकन प्रोटेस्टेंटों, जिन्हें डिसेंटर्स कहते थे, उन पर काफी सख्ती की गई। उन्हें सरकारी पदों से बाहर रखा गया, उनकी सभाओं पर रोक लगाई गई। तो धार्मिक शांति तो नहीं आई।
और राजनीति में?
दरबार में विलासिता और भ्रष्टाचार की बातें होने लगी। डचों से युद्ध हुए जिनमें इंग्लैंड को खास सफलता नहीं मिली, और राजनीतिक तनाव फिर बढ़ने लगा, खासकर जब ये सवाल उठा कि चार्ल्स द्वितीय के बाद राजा कौन बनेगा।
हाँ, उनका तो कोई जायज वारिस नहीं था और उनके भाई जेम्स कैथोलिक थे।
बिल्कुल, इसी मुद्दे पर एक्सक्लूजन क्राइसिस हुआ 1679-81 के बीच। कुछ लोग, जिन्हें बाद में विग्स कहा गया, वो जेम्स को उत्तराधिकार से बाहर करना चाहते थे।
और दूसरे लोग?
दूसरे, जिन्हें टोरी कहा गया, वो राजा के उत्तराधिकार के देवीय हक का समर्थन करते थे, चाहे राजा कैथोलिक ही क्यों ना हो।
यहीं से विग और टोरी पार्टियों की एक तरह से शुरुआत हुई।
तो फिर से धर्म और उत्तराधिकार का मुद्दा गर्मा गया।
और इसका अंत कैसे हुआ? गौरवशाली क्रांति कैसे हुई?
अंत तब हुआ जब जेम्स द्वितीय 1685 में राजा बने। वो खुले तौर पर कैथोलिक थे और उन्होंने इसे छिपाया नहीं। उन्होंने कैथोलिकों को सेना और सरकार में ऊंचे पदों पर बिठाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक बड़ी स्थायी सेना बनानी शुरू की और उन्होंने कानूनों को नजरअंदाज करने के लिए अपनी शाही शक्तियों का इस्तेमाल किया।
इससे तो उनके समर्थक भी नाराज हो गए होंगे।
बिल्कुल, टोरी और चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो उनके स्वाभाविक समर्थक थे, वो भी डर गए। उन्हें लगा कि जेम्स न सिर्फ प्रोटेस्टेंट धर्म को खत्म करना चाहते हैं, बल्कि इंग्लैंड को फ्रांस जैसी तानाशाही बनाना चाहते हैं।
और फिर 1688 में क्या हुआ?
1688 में जब जेम्स के बेटा पैदा हुआ, तो एक स्थायी कैथोलिक राजवंश की संभावना पक्की लगने लगी। तब इंग्लैंड के बड़े नेताओं, विग्स और टोरीज, दोनों ने मिलकर जेम्स द्वितीय की बड़ी बेटी मैरी, जो प्रोटेस्टेंट थीं, और उनके पति हॉलैंड के शासक विलियम ऑफ ऑरेंज को सेना लेकर आने का न्योता दिया।
और विलियम आ गए।
हाँ, विलियम सीना लेकर आए। जेम्स का साथ ज्यादातर लोगों ने छोड़ दिया और वो डरकर फ्रांस भाग गए। इसी को गौरवशाली क्रांति कहा गया।
पर मॉरल कहते हैं कि उतनी गौरवशाली या क्रांति नहीं थी।
हाँ, उनका कहना है कि ये कोई आम जनता की बगावत नहीं थी, खून खराबा भी बहुत कम हुआ। ये असल में ऊंचे तबके का, एलीट क्लास का एक तरह का तख्ता पलट था। उनका मकसद अपने धर्म, एंग्लिकन और अपनी संपत्ति की रक्षा करना था। ये एक रूढ़िवादी कदम था, कोई क्रांतिकारी नहीं।
लेकिन इसके नतीजे तो बड़े अहम निकले।
हाँ, नतीजे बहुत अहम थे। विलियम और मैरी को संयुक्त शासक बनाया गया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। 1689 में बिल ऑफ राइट्स पास हुआ।
इसमें क्या था?
इसने राजा की शक्तियों को सीमित किया, जैसे राजा संसद की मर्जी के बिना कानून नहीं बना सकता, टैक्स नहीं लगा सकता, सेना नहीं रख सकता। और इसने संसद के अधिकारों को बढ़ाया। साथ ही टॉलरेशन एक्ट भी पास हुआ।
इससे क्या हुआ?
इसने प्रोटेस्टेंट डिसेंटर्स को अपनी पूजा करने की आज़ादी दी, हालांकि उन्हें अभी भी पूरे नागरिक अधिकार नहीं मिले, कैथोलिकों को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ये धार्मिक सहिष्णुता की तरफ एक कदम था।
और यहीं से ब्रिटेन की किस्मत बदली कह सकते हैं।
हाँ, काफी हद तक। इस दौर में फ्रांस से लगातार लड़ाइयां हुईं और इन लड़ाइयों के कारण एक मजबूत वित्तीय सैन्य राज्य उभरा।
मतलब
सरकार ने टैक्स लगाने, कर्ज लेने की अपनी क्षमता बहुत बढ़ा ली। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। इससे सरकार को युद्धों के लिए पैसा जुटाने में आसानी हुई। एक बड़ी पेशेवर सेना और नौसेना बनी।
और स्कॉटलैंड का क्या हुआ?
1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, जिससे ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। इसने वो मल्टीपल मोनार्की वाली समस्या को काफी हद तक हल कर दिया।
और इस नए राज्य की पहली शासक कौन बनी?
रानी एनी, जो मैरी की बहन थी, वो 1702 से 1714 तक शासक रहीं, और उनके साथ ही स्टुअर्ट दौर खत्म हुआ।
वाह, क्या जबरदस्त, मतलब उतार चढ़ाव भरी कहानी है। तो इस पूरी चर्चा से अगर हम मॉरेल के मुख्य संदेश या की थीम्स निकालने की कोशिश करें तो वो क्या होंगे?
सबसे पहला और सबसे जरूरी संदेश तो है धर्म की केंद्रीय भूमिका। मॉरेल बार बार यही कहते हैं कि 17वीं सदी के संघर्षों को समझने के लिए आपको धर्म को समझना ही होगा। यह सिर्फ राजनीति या अर्थव्यवस्था का मामला नहीं था।
हाँ, आपने बताया कि लोगों के लिए उनका मजहब उनकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा था।
बिल्कुल, गृह युद्ध असल में प्रोटेस्टेंट धर्म की अलग अलग व्याख्याओं के बीच की लड़ाई थी, और पोपरी यानी कैथोलिक धर्म का डर, वो एक असली राजनीतिक और धार्मिक आतंक था। उसे तानाशाही और विदेशी गुलामी से जोड़कर देखा जाता था।
दूसरा पॉइंट क्या होगा?
दूसरा, ब्रिटिश समस्या यानी तीन राज्यों का मसला। ये कहानी सिर्फ इंग्लैंड की नहीं है। स्टुअर्ट राजाओं की नाकामी का एक बड़ा कारण यह था कि वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड जैसे तीन अलग अलग मिजाज वाले राज्यों को एक साथ साध नहीं पाए।
हाँ, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में जो हुआ उसी ने इंग्लैंड में गृह युद्ध की चिंगारी भड़काई। आज भी हम देखते हैं कि एक देश में अलग अलग क्षेत्रों या समुदायों को साथ लेकर चलना कितनी बड़ी चुनौती होती है।
सही कहा। तीसरा, गृह युद्ध एक हादसा था, कोई तयशुदा योजना नहीं। मॉरेल इस सोच को नकारते हैं कि ये सब होना ही था, कि ये लोकतंत्र की तरफ एक अनिवार्य कदम था।
हाँ, वो कहते हैं कि ये ज्यादातर लोगों के लिए एक अनचाही तबाही थी।
बिल्कुल, जो गलतफहमियों, राजा की गलतियों और समझौता करने की नाकामी के कारण हुई। बहुत से लोग तो लड़ना ही नहीं चाहते थे, ये एक तरह की ट्रेजेडी थी।
चौथा पॉइंट।
चौथा, स्थानीयता का महत्व। आम लोगों के लिए लंदन में क्या हो रहा है, इससे ज्यादा जरूरी था कि उनके अपने गांव या कस्बे में क्या हो रहा है। युद्ध में कौन किसका साथ देगा, ये अक्सर स्थानीय वफादारी या अपने इलाके को बचाने की चिंता से तय होता था, ना कि किसी बड़े राष्ट्रीय मुद्दे से। कई इलाके तो तटस्थ रहने की कोशिश करते रहे।
ये बॉटम अप अप्रोच वाली बात फिर से।
हाँ, पांचवा, एक टिकाऊ समझौता बनाने में लगातार नाकामी। पूरी सदी में यही पैटर्न दिखता है, चाहे राजा जीते या संसद, कोई भी ऐसा हल नहीं निकाल पाया जो सबको मंजूर हो और जिससे स्थायी शांति स्थापित हो सके।
क्रॉमवेल भी नाकाम रहे, चार्ल्स द्वितीय की बहाली भी पूरी तरह सफल नहीं हुई। आखिर में 1688 का समझौता, जो डर और थकावट से उपजा था, वही जाकर टिकाऊ साबित हुआ।
और छठा पॉइंट।
छठा, इन सब उथल पुथल के बीच आधुनिक राज्य का अनजाने में उदय। लड़ाइयों के खर्चे ने सरकार को नए टैक्स लगाने, जैसे एक्साइज ड्यूटी, लैंड टैक्स, कर्ज लेने, बैंक ऑफ इंग्लैंड और एक बड़ी नौकरशाही बनाने पर मजबूर किया। इसी से वो वित्तीय सैन्य राज्य बना, जिसने आगे चलकर ब्रिटेन को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाया। ये किसी योजना का नतीजा नहीं था, बल्कि जरूरत का परिणाम था।
ये तो बहुत महत्वपूर्ण थीम्स हैं। मॉरेल की किताब में कुछ ऐसे विचार या कोट्स भी हैं जो दिमाग में रह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल है। जैसे उनका ये कहना कि अंग्रेजी गृह युद्ध को पहली आधुनिक क्रांति के रूप में नहीं बल्कि यूरोप के महान धर्म युद्धों में से अंतिम के रूप में समझा जाना चाहिए।
हाँ, ये पूरी सोच ही बदल देता है। ये प्रगति की कहानी नहीं बल्कि गहरे धार्मिक विश्वासों की टक्कर की कहानी है।
बिल्कुल। या फिर ये कि स्टुअर्ट राज्य का पतन एक ब्रिटिश घटना थी, सिर्फ अंग्रेजी नहीं, ट्रिगर लंदन में नहीं, एडिनबर्ग और डबलिन में खींचे गए थे।
ये तीन राज्यों के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। मतलब इंग्लैंड के संकट को समझने के लिए स्कॉटलैंड और आयरलैंड को समझना जरूरी है।
सही। एक और बात जो मॉरेल जोर देकर कहते हैं, अधिकांश अंग्रेज 1642 में लड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें केंद्र से व्यवस्था के ढहने के कारण संघर्ष में घसीटा गया था। उनकी प्राथमिक वफादारी अक्सर उनके काउंटी के प्रति थी, किसी कारण के प्रति नहीं।
ये विचारधारा से प्रेरित युद्ध की कहानी को तोड़ता है और आम लोगों के नजरिए को सामने लाता है।
हाँ, और शायद सबसे बुनियादी बात ये कि 1603 से 1688 तक पूरी सदी की समस्या एक स्थायी समझौता खोजने में विफलता थी जो राष्ट्र की राजनीतिक और धार्मिक अंतरात्मा की सहमति प्राप्त कर सके। मतलब लगातार अस्थिरता बनी रही क्योंकि कोई सर्वमान्य हल नहीं निकल पाया।
ये दिखाता है कि स्थिरता और सहमति बनाना कितना मुश्किल और जरूरी है।
और अंत में एक दिलचस्प विचार, 1714 तक ब्रिटेन ने संयोग से यूरोप में सबसे सफल राजनीतिक प्रणाली बना ली थी, बेहतर ज्ञान के माध्यम से नहीं बल्कि बेहतर लचीलेपन के माध्यम से।
मतलब सफलता अक्सर किसी ग्रैंड प्लान से नहीं बल्कि हालात के हिसाब से ढलने और व्यवहारिक समझौते करने से मिलती है। किस्मत और जरूरत का भी हाथ होता है।
हाँ, कह सकते हैं।
ये सब सुनने में तो बहुत ज्ञानवर्धक है और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए तो है ही, लेकिन सवाल ये है कि इस 300-400 साल पुरानी कहानी का आज हमारी जिंदगी से क्या लेना देना, इससे हम क्या प्रैक्टिकल सबक सीख सकते हैं?
कई सबक हैं मेरे ख्याल से। पहला तो चाल प्रथम के उदाहरण से ही मिलता है, वैचारिक कठोरता। मतलब अपनी बात पर जरूरत से ज्यादा अड़ने और दूसरों की न सुनने का खतरा। एक लीडर के लिए प्रैक्टिकल होना, दूसरों की राय समझना, सहानुभूति रखना और समझौता करना कितना जरूरी है, ये उनकी कहानी बखूबी दिखाती है।
हाँ, ये तो आजकल के नेताओं के लिए भी एक सबक है।
बिल्कुल। दूसरा, समाज में विश्वास प्रणालियों, चाहे वो धर्म हो या विचारधारा, इनकी ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। मॉरेल दिखाते हैं कि कैसे धार्मिक मतभेद पूरे देश को जला सकते हैं। आज भी हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग विश्वास या आइडियोलॉजी लोगों को बांट सकती है। इसे समझना और इससे निपटना बहुत जरूरी है।
तीसरा,
राजनीतिक विश्वास कितना नाजुक होता है, ट्रस्ट। जब लोगों का नेताओं या संस्थाओं से भरोसा उठ जाता है तो हालात कितने बिगड़ सकते हैं, ये उस दौर में साफ दिखता है। आज के लोकतंत्रों के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है कि जनता का विश्वास बनाए रखना कितना अहम है।
चौथा सबक क्या हो सकता है?
चौथा, जटिल घटनाओं की आसान व्याख्याओं से बचना। गृह युद्ध क्यों हुआ, इसका कोई एक सिंपल जवाब नहीं है। कई कारण थे, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, स्थानीय। ये हमें सिखाता है कि दुनिया की समस्याओं को, चाहे वो राजनीतिक संकट हो या सामाजिक मुद्दे, गहराई से कई पहलुओं से देखने की जरूरत है। हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती।
सही बात है। और कोई सबक?
हाँ, पांचवा, शासन व्यवस्थाएं कैसे विकसित होती हैं। संसदीय अधिकार, पूजा की स्वतंत्रता, ये सब चीजें हमें थाली में सजी नहीं मिली। इनके लिए लंबा संघर्ष हुआ है, समझौते हुए हैं, पीछे हटना पड़ा है, फिर आगे बढ़ना पड़ा है। ये हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र और अधिकार कोई अंतिम मंजिल नहीं बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रियाएं, जिन्हें सहेज कर रखना पड़ता है, जिन पर बहस और सुधार जारी रहना चाहिए।
तो इस पूरी दिलचस्प बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे, सबसे खास बात क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि इतिहास कितना अप्रत्याशित और कितना मानवीय होता है। ये कोई सीधी साधी अच्छी बनाम बुरी की कहानी नहीं है। ये असल में विश्वास, डर, वफादारी और गलतफहमियों से जूझ रहे लोगों की एक बहुत उलझी हुई कहानी है, और कैसे बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं अक्सर छोटी छोटी गलतियों, संयोग और अनजाने नतीजों का परिणाम होती हैं। कोई ग्रैंड डिजाइन नहीं होता अक्सर।
और आपके लिए?
मेरे लिए दो बातें खास रहीं। पहला, धर्म की विस्फोटक शक्ति, कैसे वो लोगों को अभूतपूर्व तरीके से प्रेरित भी कर सकता है और भयानक टकराव का कारण भी बन सकता है, और कैसे वो राजनीति की दिशा तय कर सकता है। दूसरा, ये एहसास कि किसी भी देश या समाज की स्थिरता कितने नाजुक धागों पर टिकी होती है, विश्वास, समझौता और असरदार नेतृत्व। मॉरेल का वो तीन राज्यों, स्थानीयता और धर्म पर जोर, وہ واقعی اس دور کو سمجھنے کا ایک نیا اور زیادہ مکمل فریم ورک دیتا ہے۔
سوچنے کے لیے ایک آخری بات یہ چھوڑی جا سکتی ہے کہ کیا اتہاس زیادہ تر سنیوگ، غلط فہمی اور انپیکشت پریناموں کا ہی کھیل ہے بجائے کسی سوچی سمجھی یوجنا یا پرگتی کے؟ اور کیا ہم آج بھی انجانے میں ایسے ہی بیج بو رہے ہیں جن کے نتیجے ہماری سوچ سے بالکل پرے ہوں گے؟
ملیں گے اگلے انک میں ایک اور وشو پرسدھ ویکتتو، ایک اور کتاب اور ایک ایسے نئے وچار کے ساتھ جو ہماری دنیا کو آکار دیتا ہے۔ یہ آڈیو سارانش آپ کے لیے اکتر فاؤنڈیشن دوارا پرستت ہے۔